ओम शांति। आप सभी शिव शक्तियां कितनी न पद्मा पदम भाग्यशाली है। भगवान ने स्वयं विश्व के कोने कोने से आप सभी आत्माओं को पसंद कर चुन लिया। चुना भगवान ने, आप प्रभु के चुने हुए रतन हो। दुनिया ने जिसको अगला कहा उसको परमात्मा ने सबला नहीं लेकिन शिव शक्ति कहा। न सिर्फ कहा परंतु बाबा ने अपनी वो शक्तियां सर्व शक्तियों से सुसज्जित इस सेना को तैयार किया। और जिसको दुनिया की महान आत्माओं ने असंभव और अशक्य कहा वो कार्य बाबा ने आप सबके द्वारा कराने का एक बीड़ा उठाया। वो है इन बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्माओं संतों को झुकाने वाले वो कौन है? आप प्रवृत्ति में रहने वाली शिव शक्तियां हो। इतना महान कार्य बाबा ने आप सबके सिर पर रखा है तो आपको अपने भाग्य के ऊपर नाज है। वाह बाबा, वाह हमारा भाग्य, वाह शिव शक्ति सेना, वाह। अब ऐसी शिव शक्ति सेना, कल हमारी मीठी मम्मा का विशेष पुण्य स्मृति दिवस आ रहा है, इसकी सेनानी मातेश्वरी। आप सोचो मातेश्वरी आपको वतन से देख करके कितना खुश हो रही है कि वाह मेरी शक्ति सेना, वाह। अब ऐसी शक्ति सेना जिसको स्वयं भगवान ने सेना का टाइटल दिया हो और जो सेना में हो, आप समझते हो कि आप सेना में हो? जो सेना में है जरा हाथ खड़ा करेंगे। सेनानी मम्मा है, हम सब उसकी सेना में है। तो सेना में कहां सुस्ती और निंद्रा का प्रश्न आएगा? आएगा नहीं। अब दोनों बातें विरोधाभासी है, या तो हम उसकी सेनानी की सेना में नहीं है, और अगर हम उसकी सेना में है तो हमारे में निंद्रा और सुस्ती हो नहीं सकती। दोनों हो सकता है एक साथ में? नहीं। तो फिर आज के विषय को हम न्याय कैसे देंगे? कैसे न्याय देंगे? क्योंकि बाबा कहता है चलते चलते समय और परिस्थिति अनुसार हमारी स्थिति बदल जाती है, तो ऐसी बदली हुई स्थिति में जब माया का वार होता है और आत्मा इन कमजोरियों के वशीभूत हो जाती है, उससे मुक्त करने के लिए बाबा ने आज का हमें ये सब्जेक्ट दिया है। ठीक है, अब मैं आपको पूछती हूं, अमृत वेले में जो समझते हैं कि अभी भी हमें निंद्रा देवी सताती है, निंद्रा का वार होता है, वो सच्चाई से हाथ खड़ा करें? मेजोरिटी है नहीं, सच्चाई है। जहां सच्चाई है वहां बाबा उस कमी को भरने का बल देगा आपको। अच्छा, जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते समय जिसको ये सुस्ती का वार होता है वो हाथ खड़ा करेंगे? बात नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, हाथ भी नीचे कर लेंगे। چلو اب سب سے پہلے ہم امرت ویلے کو لیتے ہیں. امرت ویلے میں جو سستی کا وار یا نندرا کا وار ہوتا ہے, مجھے جب یہ وشے دیا تو میں سوچ رہی تھی تو سب سے پہلے میرے مانس پٹل پر مما آئی. مما کے بارے میں ہم نے سنا ہے, مما ہمیشہ 2:30 بجے اٹھتی تھی اور 2:30 بجے اٹھ کر کے مما کی اپنے روم میں کرسی ہوتی تھی, اس پر مما بیٹھتی تھی اور ایسے بیٹھتی تھی کہ اس کے یہ دونوں نیتر بلب کے سمان جیسے اس سے پرکاش چاروں طرف پھیل رہا ہو ایسی جاگنتی جوت استھتی میں مما ایک رس ہو کر کے بیٹھتی تھی. نہ جھٹکا, نہ اباسی, نہ اداسی, یہ مما کا پریکٹیکل سوروپ تھا. تو مما نے اس استھتی کو کیسے پایا؟ تو سب سے پہلی بات, امرت ویلے میں اگر ہمیں جھٹکا آتا ہے تو اس کا کارن ہے کہ ہم نے ابھی تک امرت ویلے کے مہتو کو یتھارتھ ریتی سے نہیں سمجھا ہے. ہم نے کیول اتنا سمجھا ہے کہ امرت ویلے اٹھ کر کے بابا کو یاد کرنا چاہیے, بابا ہمیں سکاش اور شکتیوں سے بھرپور کرتا ہے اس لیے ہم اٹھ کر کے آ کر کے بیٹھتے ہیں. لیکن بابا کہتا ہے سمجھنا ارتھات سمانا, سمانا ارتھات سوروپ بننا. تو امرت ویلے میں جو ہمارے سارے دن کا آدی ہے, جس میں بابا کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اسپیشل سمے نکال کر کے بچوں کا آواہن کرتا ہوں, وہ سمے میں نے بچوں کے لیے رکھا ہے. سچ مچ کیا اس چیز کو ہم نے محسوس کیا کہ میرا بابا میرے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ دو چیزیں ہیں, ایک ہے بدھی سے سمجھنا, دماغ سے سمجھنا, اور دوسرا ہے دل سے سمجھنا. تو دماغ سے ہم نے اس چیز کو سمجھا ہوا ہے, آج ہم کیا کریں گے؟ دماغ کو دل میں بدلیں گے. آپ سوچئے آنکھ کھلتے ہی میرے سامنے میں 1000 بھجا والا بابا وردانوں سے اپنی جھولی بھرنے کے بھر کر کے مجھ آتما پر وردان لٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اگر یہ درشیہ آپ کے سامنے آتا ہے اور بابا یہ بھی کہتا ہے کہ بچے امرت ویلے میں سمان بھاؤ کا وردان دیتا ہوں, امرت ویلے میں آپ کے جو بھی سنکلپ ہیں ان سبھی سنکلپ کو سدھ کرنے کی شکتی دیتا ہوں, ہم نے اس چیز کو صرف سمجھا لیکن پریکٹیکل نہیں کیا.
اپنے سکرموں کے بلدار ہی ستیوگ میں تم کو آنا ہے, شیو پتا کو اب یاد کرو. شیو پتا विकराल विनाश खड़ा आगे सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें
सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें जाना है।
ओम शांति। अमृत वेले में आंख खुलते ही मन की आंख जब बाबा को देख लेती है ये आत्मा बाबा के नैनों की छत्र छाया में चली जाती है और ये छत्र छाया सारा दिन आपको हर प्रकार की परिस्थिति और माया से सामना करने में मदद रूप होती है। आप प्रैक्टिकल अनुभव करके देखो। सुस्ती से नहीं उठो, नियम प्रमाण नहीं उठो, नेमीनाथ बन करके नहीं बैठो। मैं किससे मिलन मना रही हूं, कौन मेरे सामने में है, जब इतना वैल्यू आप देंगे हो नहीं सकता है कि आपकी आंख बंद रहे। मुझे याद है छोटेपन में मैंने जब इस चीज का अभ्यास किया मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए कि ये नेत्र सदा खुले रहे। और तब मुझे याद आता है मैं 6-8 मास तक इस चीज का एक गहरा अभ्यास किया था। पहले दिन 2:30 बजे उठी, उठकर के बाबा के कमरे में गई और बाबा को कहा कि बाबा मेरा योग लगे या ना लगे, मुझे किसी शक्ति की अनुभूति हो या ना हो, लेकिन मैं तेरे से ये वरदान चाहती हूं ये नेत्र खुले रहे, बस मुझे इतना चाहिए। इस एक संकल्प से जाकर के बाबा के कमरे में बैठी। वो दिन मुझे आज भी याद आता है, जैसे बाबा के सामने बैठी और इतना गहरा बाबा ने मुझे मिलन का अनुभव कराया, क्योंकि मैंने उससे मांगा सिर्फ आंख खुली रहे। जब इस याद में, इस संकल्प से याद में बैठी, याद का आप उल्टा शब्द करो तो उस दया के सागर को इतना तो दिखाई देगा कि ये बच्ची अगर इतनी दृढ़ता से बैठी है तो मैं इसको अनुभव कराऊं। और तब केवल एक दिन नहीं, अभ्यास के लिए 6-8 मास तक, चाहे रात्रि को मैं 12 बजे सोई, चाहे दिन में रेस्ट मिला या नहीं मिला, लेकिन एक दृढ़ संकल्प था कि इस अमृत वेले में मुझे खुली आंख से बाबा से मिलन मनाना है, मुझे बाबा से ये वरदान लेना है। बाबा दे रहा है लेकिन लेने वाले हम बच्चे कमजोर बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, बस आज के बाद मैं कभी अमृत वेला मिस नहीं करूंगी, चार दिन, आठ दिन, दस दिन, एक मास, और उस एक मास के बाद में रात्रि को कोई बहुत लेट हो गए, सारा दिन में रेस्ट नहीं किया या ऐसे कोई परिस्थितियां आ गई, वहां हम उस चीज को ब्रेक कर देते हैं और धीरे 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 फिर हमारा उस पुरुषार्थ में कमजोरी आती जाती है। लेकिन आज आप इस एक संकल्प को यहां से परिवर्तित करके जाएंगे कि किसी भी परिस्थिति के अंदर मैं अपने अमृत वेले को मिस नहीं करूंगी। फिर से रिपीट करती हूं, मिस करने का मतलब बाबा के कमरे में मुझे ऐसे जाकर के बैठ जाना है, नहीं। मेरी प्रेजेंस मार्क बाबा के पास होनी चाहिए। पूछो कि बाबा के कमरे में तो बैठी लेकिन बाबा के पास बैठी, उसके पास मेरी प्रेजेंस मार्क है। और सचमुच इस लगन से जब आप बाबा के पास में बैठेंगे, ऑटोमेटिक आत्मा प्राप्ति का अनुभव करती है, और जहां आत्मा को प्राप्ति होती है वहां नींद नहीं होती है। साकार में भी बाबा कई बार मुरलियों में मिसाल देते हैं, अपना मिसाल बाबा सुनाता था कि जब रात को स्टीमर आता था तो बाबा सारी सारी रात जागता था, उबासी भी नहीं खाता था, क्यों, कमाई हो रही है। तो हमें जो नींद आने का कारण है, हम प्राप्ति स्वरूप होकर के नहीं बैठते हैं, इसलिए हमें नींद आती है। उसको आप अंडरलाइन करके कि मैं कई बार ऐसे पुरुषार्थ करती थी, 15 मिनट मुझे कम से कम बाबा से प्राप्ति स्वरूप होकर के बैठना ही है, उसके बाद उठना है। देखो आप, और 5000 वर्ष के बाद ये बाबा मिला है और ये बाबा मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कुछ मुझे दे रहा है। भक्ति मार्ग में लोग कह रहे हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम, और ये वरदानों की झोली लुटा रहा है, और ये आत्मा की आंख बंद हो जाए, कैसे हो सकता है। जब तक आपको ये पक्का अभ्यास ना हो, कैसे भी ये आंख खुली रहे, आप उसको लगातार करो। कारण नहीं दो, मैरिज में गए, बेटे की मैरिज थी, बेटी का ये प्रसंग था, ये सारे प्रसंग चलेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट और पहले कौन है, मेरा बाबा। आप देखो निंद्रा से मुक्त हो जाएंगे। फिर भी बाबा युक्तियों में कहता है, दूसरी बात, आप जिम्मेवार आत्माएं हो। ये समय कौन सा है, वो हमने अमृत वेला लिया, दिन का अमृत वेला, लेकिन बाबा कहता है सारा ही संगम युग ये कल्प का अमृत वेला है। जैसे वहां दिन के आदि में श्रेष्ठ कर्म करने से, उस ब्रह्म मुहूर्त में योग करने से सारा दिन हमारी दिनचर्या अच्छी रहती है, ऐसे हम अपने आप को पढ़ाएंगे कि इस कल्प के संगम युग पर, अर्थात सारा संगम युग अमृत वेला है, इस अमृत वेले को यथार्थ रीति से मनाने से हम सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। अगर हमारा वर्तमान श्रेष्ठ है, सारे कल्प का आधार संगम पर है, सत्युग में राज्य पद पाना है, उसके बाद हमारा पूज्य के बाद पूजनीय पद है, भक्त हमारी पूजा करेंगे, और फिर से संगम पर हमारा ब्राह्मण स्वरूप है, इन तीनों में श्रेष्ठ समय उसको बनाने का कौन सा है? यही संगम का समय है। इस संगम के समय को अगर हमने साधारण समझ करके गवा दिया तो सारे कल्प की कमाई वो हमने गवा दी। मैं एक बार ये अमृत वेले की जब वो ये पढ़ रही थी, बाबा से बात कर रही थी, बाबा ने इतनी सीरियस बात कही। बाबा ने कहा कि अगर एक दो घंटा यहाँ आप लेट उठते हो तो सत्ययुग में एक दो जन्म लेट आएंगे, समझा? हम समझते ना भाई, हम तो सारा दिन जॉब करने वाले हैं या हम तो सारा दिन गृहस्थ में रहने वाले हैं, सुबह 3:30 बजे नहीं उठ सकते हैं, 5 बजे उठे, कभी 4:30 बजे उठे, लेकिन बाबा ने कहा कि अगर एक घंटा लेट तो एक जन्म लेट। अब अगर हम संगम के ऊपर में जो बाबा हमें समय, संकल्प, श्वास इनका एक महत्व बता रहा है, उस महत्वपूर्ण समय में हम अपने संकल्पों को वेस्ट करें, संगम युग के श्रेष्ठ खजाने को यही प्रवृत्ति की बातों में, साधारण बातों में अगर हमने वेस्ट कर दिया तो हमारे जैसा महान समझदार कोई होगा? होगा? प्रवृत्ति ये आप बाबा की श्रीमत के अनुसार संभाल रही है। श्रीमत किसने दी है? बाबा ने दी है। आपकी जो लौकिक जिम्मेवारियां हैं उनको बाबा जानता है, वो जानने के बावजूद भी बाबा आप में वो शक्ति भर रहा है। आप कभी भी ये नहीं समझो कि जो नींद आने का कारण है वो सारा दिन की थकावट है, नहीं, नींद आने का जो कारण है वो है सारा दिन हम बॉडी कॉन्शियस में कर्म करते हैं, उसके बोझ से आत्मा अमृत वेले में बोझिल होती है। कार्य से नहीं थकते हैं, थकते किससे हैं? बॉडी कॉन्शियस से। तो संगम युग के महत्व को आप अपने सामने में रखेंगे। इस संगम में बाबा ने हमें कहा चलो तो 1000 कदम मैं तुम्हारे साथ हूं। इस चीज का अनुभव कभी आपने किया है? हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो बाबा 1000 कदम हमारे साथ चलता है। हाथ खड़ा करेंगे? सारे अनुभवी हैं। तो बस हमें क्या करना है? एक हिम्मत का कदम आगे रखना है कि बाबा ये मेरे नेत्र खुले सदा तुझे देखते रहे, और ये स्थूल नेत्र तब खुले रहेंगे जब ये सदा जागंती ज्योत रहेगी, अर्थात आत्मा अपने उस आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, आप सब बाबा की जिम्मेवार आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है। आपके चरित्र को देख करके दूसरों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि जिम्मेवारी एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक सुस्ती को दूर कर देती है। आप सबको अनुभव होगा जिस समय लौकिक में आपका कोई भी प्रसंग होता है आपको नींद आती है, मैरिज है आपके घर में, नींद आती है, उस समय आपको पढ़ाना पड़ता है कि नहीं मुझे आज तो जागना पड़ेगा, आज बेटे के लिए ये करना है, बेटी के लिए ये करना है, इसलिए जागना है। नहीं, जिम्मेवारी में वो ताकत है जो ऑटोमेटिक सुस्ती को दूर करती है। मुझे बचपन की एक बात याद आती है, मैं मधुबन में 1971 में आई, छोटी थी, तो मुझे कभी 4 बजे का रिकॉर्ड सुनाई नहीं देता था, जाग सजनिया जाग, میں دیدی کو بولتی تھی دیدی میرے کو سنائی نہیں دیتا ہے، صبح میں اٹھ نہیں پاتی ہوں. دیدی کے ساتھ میں جو بہن تھی، ایک بار اس کے لوکک کا کوئی کسی نے شریر چھوڑا اور اس کو اپنے لوکک گھر جانے کا ہوا، تو مجھے وہ بہن ڈیوٹی دے کر کے گئی کہ بڑی دیدی تھی، تو بڑی دیدی کو بولا صبح صبح کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے ایک کوئی گولی دیتے تھے، تو بولا یہ دوا تم دیدی کو دینا، دیدی کلاس میں جائے اس کے پہلے، امرت ویلے کے یوگ کے پہلے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ارے اس دن چار نہیں بج رہا تھا، میں بار بار گھڑی دیکھے، ابھی ریکارڈ نہیں بجا، ابھی ریکارڈ نہیں بجا، اور جیسے چار بجے کا ریکارڈ بجا ایسے فٹ سے میں سیدھی کمرے سے اٹھی اور دیدی کے کمرے میں. ابھی دیدی بیٹھی بابا کو گڈ مارننگ کر رہی ہے، میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا، ٹیبل سے جا کر کے دوائی کی ڈبی لی، گلاس پانی میں ڈالا، دیدی بڑی اچھی مست یوگ میں بیٹھی ہے اور میں اپنا کام کر رہی ہوں. دیدی نے ایسے کر کے آنکھ کھولی اور میرے سامنے میں دیکھا، پیار تو کیا، پیار میں پھر آنکھ بھی دکھائی، مجھے کہتی ہے مٹھی، بابا کو گڈ مارننگ بھی نہیں کیا اور سیدھی کمرے میں آ گئی. کلاس کے بعد میں دیدی مجھے ملی، میں نے کہا دیدی مجھے کہا تھا کہ دیدی کو صبح صبح ٹیبلٹ دینی ہے، اس لیے میں جیسے گیت بجا ایسے آپ کے کمرے میں آ گئی. تو مجھے دیدی نے بولا کہ آج تمہاری آنکھ کیسے کھلی، کیسے کھلی، کیونکہ مجھے گولی دینی تھی اور اس گولی نے کیا کیا، چار بجے کا ریکارڈ بھی سنائی دیا اور امرت ویلا بھی کیا. کوئی بھی پرکار کی ذمہ داری جب اس کو آتما سویکارتی ہے، ایک ہے سمجھتے ہیں ہم وشو پریورتک آتمائیں ہیں، ہم وشو کلیانکاری آتمائیں ہیں، اس چیز کو ہم نے سمجھا ہے لیکن سویکارا نہیں. جب آپ سویکار کر لیں گے میں ذمہ دار آتما ہوں، تو آٹومیٹک اس کے اوپر آپ وجے پراپت کر لیں گے. تیسری بات، بابا کہتا ہے ہمیشہ امنگ اور اتساہ میں رہو. کبھی بھی ہمارا امنگ اور اتساہ کم نہ ہو، اندرونی آنترک نشہ، اس نشے کو بھی بابا یوگ کہتا ہے، جو ہم دادی جانکی سے کئی بار دیکھتے ہیں. دادی ایک ہی شبد بولتی ہے، میں کون میرا کون، یہ کیا ہے، آنترک نشہ ہے اور ہمیشہ امنگ اور اتساہ ہے. پرستھتیوں کا کام اپنا ہے لیکن ہر پرستھتی کے اندر مجھے بڑے امنگ اور اتساہ کے ساتھ اس ویلیوبل جیون کو، اس ویلیوبل سمے کو سفل کرنا ہے. اگر آپ کے اندر میں امنگ اور اتساہ بنا رہا، آپ کو بنائے رکھنا پڑے گا، تو امرت ویلا یا سستی ہے، آلس ہے، اس پر آپ جیت پا سکتے ہو. چوتھی بات بابا کہتے ہیں، کسی بھی نیم کو نہیں توڑو، ارتھات پرستھتی کے کارن سے، چاہے امرت ویلا یوگ، مرلی کلاس، سیوا، ہمارے جیون کی جو بھی دھارنائیں مریادائیں ہیں، ان مریاداؤں کو ہمیں نہیں توڑنا ہے، کیونکہ اس کا بھی بوجھ آتما پر پڑتا ہے اور اس بوجھ سے جب آتما بوجھل ہو جاتی ہے تو بھی بدھی بھاری ہے اور ہمارے پر اس کا وار ہوتا ہے. اپنے آپ کو دیکھو، اگر آپ تھکے ہوئے ہو تو بھی مجھے بابا کی مرلی کا کلاس مس نہیں کرنا ہے. نالج از مائٹ، بابا کی مرلی میں وہ طاقت ہے جو ہماری کمزوریوں کو ختم کرتی ہے. اس میں پھر آتا ہے، لیکن آتا ہے मुरली को भी हम सुनते समय, बहुत जगह बच्चियों के लिए क्लासेस कराने के लिए जाना होता है, क्लास में जब बैठे हुए हैं, मेजोरिटी ब्राह्मण आत्माएं, मेजोरिटी, सब नहीं कहती हूं, लेकिन आप देखो तो ऐसे बैठे, ऐसे सुन लिया, ऐसे हो गया। ये मुरली आपको बल नहीं देगी। आप अपने चार्ट में लिखेंगे मैंने मुरली क्लास किया, लेकिन ये मुरली क्लास नहीं है। मुरली का अर्थ क्या है? मुरली बजे और गोपियां नाचे, उसको मुरली कहते हैं ना। मुरली बजे और गोपी सोए, कहां सुना? नहीं सुना। मुरली बजती थी, एक आंख में सुरमा डाला, एक में नहीं डाला, और दौड़ती जा रही है गोपी। कभी गोपी ने यह भी नहीं कहा कि कृष्ण आज उस जमुना के कंठे पर मुरली क्यों बजाता है, वो तो बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगी। और हम गोपियां क्या कहते हैं? बहन जी सेंटर बहुत दूर पड़ता है ना, इसलिए हम नहीं जा सकते। अरे जहां भी हो, दूरी कहां? भगवान की मुरली बजे, वो मुझे सुनाने के लिए आए। और ये गोपी किसमें झूमने की जगह क्या करे, इसलिए मैं कभी कभी कहती हूं तीन बातें मुरली में आती हैं। एक आता है मुरली में, बाबा कहता है बच्चे तुम सब सीताएं हो, आता है ना। दूसरा बाबा कहता है तुम सब अमरनाथ की पार्वतियां हो, और तीसरा बाबा कहता है तुम सब गोपियां हो। ठीक, सीता की हिस्ट्री आप देखो, सीता ने क्या किया? एक राम को याद करती थी, दूसरा कोई में उसकी बुद्धि योग नहीं था, लेकिन सारा जीवन सीता रोती रही। पहले उसको राम के साथ वनवास में जाना था, तब रोया। राम के साथ वनवास में चली गई, वहां जाकर के वो मृग को देखा तो उसके लिए जिद किया। फिर रावण की शोक वाटिका में चली गई, तब रोया। तो सारा जीवन आप देखो तो क्या है, हिस्ट्री क्या कहती है? रोया। क्योंकि राम के बनने के बाद हम आत्माएं भी हमेशा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, हमारी बुद्धि में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन बाबा का बनने के बाद जो ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन है, हमारी जो इच्छाएं और कामनाएं हैं, वो इच्छाएं कामनाएं वासनाएं तृष्णाएं हमें बाबा से दूर कर देती। और ये दूर होना, यही रोना है। उस समय ब्राह्मण आत्मा को अंदर से वो तड़फन होती है। बार बार बाबा भी कहेंगे और कहेंगे बाबा मेरा योग नहीं लगता है, समझा? बाबा कह रहे हैं लेकिन मिलन की अनुभूति नहीं हो रही है। तो सीता ने भूल कहां की? अपने आप को मर्यादाओं के बाहर कर दिया, इसलिए उसने रोया। दूसरा, अमरनाथ की पार्वतियां, पार्वती के लिए क्या कहते हैं? अमरनाथ कथा सुना रहा था और पार्वती क्या कर रही थी? सो रही थी। अब वो पार्वतियां कौन है? हम है, समझा? अब पार्वतियां क्या करती हैं? शिव बाबा अमर कथा सुना रहा है, बाबा करता है बच्चे अशरीरी भाव, समझे? बाबा कहता है बच्चे ईर्ष्या द्वेष इन सब से अपने आप को पर रखो। और हम उस समय सोच रहे हैं कल इसने मेरे साथ ये कहा, ये बरोबर नहीं कहा, ये ठीक नहीं कहा, تو اس کو آپ نے سنا؟ نہیں سنا. تو کیا کیا؟ امرناتھ کتھا سنا رہا تھا. آپ کتھا سن بھی رہے ہیں, ہاں ہاں بھی کر رہے ہیں, لیکن اندر سے آتما سوئی ہوئی. تو سیتا روتی تھی, پاروتی سوتی تھی اور گوپیاں ناچتی تھی. تو آپ سب کون؟ گوپیاں, پکا کر کے جا. اور کل ہی اپنے آپ کو چیک کرنا یہاں کلاس میں, میں سچ مچ گوپی بن کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. ارے یہ اپنی دادیوں کو دیکھو, ان کی ہسٹری پڑھو, ان سے انوبھو سنو, کتنے بندھن, کتنی مارے کھائیں, لیکن ایسے بابا کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بس بابا بیٹھا ہے, بابا کی شکتی مل رہی ہے. اور بابا نے پھر ان سنسکاروں کو, سنسکار ہے نا, ان کو ختم کرنے کے لیے پریکٹس کرائی ہے. آپ سب کو بھی ابھیاس کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے تھوڑا دن پہلے میسانا میں ایشو دادی آئی تھی, تو ایشو دادی اپنا انوبھو سنا رہی تھی. بولی بابا نے ہمیں یہ کھلی آنکھ رہے اور ایک بابا کی یاد رہے تو پریکٹس کرائی. تو بولی بابا سچ مچ کیا کرتا تھا, رات کو تپسیا کراتا تھا اور ایسے ہم سب انڈیویجل بیٹھتے تھے, یہ چوٹی اوپر باندھ دیتا تھا, جیسے جھٹکا آئے تو یہ بابا نے پریکٹیکل میں انہوں کو کرایا. ہمیں بھی کوئی بھی کارن دیے بنا ابھیاس کو ڈبل انڈر لائن کرنا پڑے گا. ہے آتما تجھے یہ کرنا ہی پڑے گا. خود کو پھٹکارو, بھگوان میرے لیے آیا ہے, بابا شکشک بن کر کے مجھے پڑھا رہا ہے, میں اس گوپیشور کی سچی گوپی ہوں. اور یہ آنکھ بند, ابھی آپ سب کتنے اچھے جاگرت بیٹھے ہو, مجھے سنانے میں اچھا لگ رہا ہے نا. اور آپ اگر جھٹکا کھاتے ہوتے تو آپ سوچو, یہ انڈائریکٹ, بابا نے ایک مرلی میں کہا بھی ہے, یہ آپ پرماتما کی انسلٹ کرتے ہو, یہ بھی بوجھ ہے. بوجھ نہیں چڑھاؤ. ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ ہمارا جو نیم ہے وہ نیم نہیں توڑو. مرلی کو کیسے سنیں گے؟ سچی گوپی بن کر کے سنیں گے. بابا نے ہمیں ایشوریہ سیوا, یہ کیول سنگم پر ہم بچوں کو ملتی ہے. آپ یہ لکش رکھیں گے کہ سارا دن مجھے یہ گرہست, یہ میری جواب داری ہے سنبھالنا ہے, جس کی جو جواب داری وہ آپ جانتے ہیں. اپنی اس ویست دنچریا میں سے میں سیوا کے لیے کہاں اور کیسے سمے نکال سکتی ہوں, آپ خود نکالو. اس تن سے مجھے یگیہ کی سیوا ضرور کرنی ہے. یہ پکا کرو. ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا ہے, بچے چھوٹے ہیں, بچے یہ جو بھی ہیں, لیکن ایشوریہ سیوا کے لیے سمے ضرور نکالو. اس کو بابا کہتا ہے بچے قاعدے میں فائدہ ہے. تو نیم نہیں توڑو. جو روز مرلی سنتے ہیں مس کیے بنا وہ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ اچھا, جن کی کبھی کبھی مس ہوتی ہے ठीक है, किसी भी कारण से अगर मिस हुई तो उस मुरली को आप पढ़ो जरूर। चौथी बात, बाबा कहता है हर रोज नए नए अनुभव करो। हम क्या करते हैं, उठते ही ऐसे बैठ गए, बस बाबा तू मेरा मैं तेरी, मैं शांत स्वरूप तुम शांति का सागर, थोड़ी देर शांत स्वरूप उसके बाद में कंप्लीट शांत। तो कभी शांति का अनुभव करो, तो कभी बाबा के साथ प्रेम का अनुभव करो, कभी बाबा के साथ शक्ति का अनुभव करो। ये आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि जब चेंज मिलता है, हर आत्मा को चेंज पसंद आता है, वैरायटी पसंद आती है। एक ही संकल्प में बैठे रहने से या सिर्फ उठ करके बैठे गुड मॉर्निंग करके एक नियम प्रमाण जो हर रोज का था वही स्वरूप में बैठे नहीं, रोज रात्रि को अपने आप को संकल्प दो। जैसे यहां आपको भट्टी में हर रोज एक सामान दिया जाता है ना, हर रोज सामान देते हैं ना, ऐसे आप स्वयं अपने आप को रात्रि को एक संकल्प दो, कल मुझे अमृत वेले चाहे तो गुण लो, शक्ति लो अथवा संबंध लो, मुझे कल परम सतगुरु का अनुभव करना है। पहले से रात्रि को मनसा को तैयार कर दो, फिर अपने आप को देखो कि सचमुच मैंने जो संकल्प लिया उसके अनुसार मैं पुरुषार्थ कर सकी, और सारा दिन भी उस बात पर अटेंशन रखो। तो हर रोज नए नए प्रयोग करो, नया प्रयोग भी आपको अंदर से स्फूर्ति और शक्ति की अनुभूति कराएगा। नेक्स्ट बाबा कहता है वैरायटी भोजन दो। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे जब अमृत वेले बैठो तो अपने आप को ये कहो कि बाबा आज चलो हम पिकनिक पर चलते हैं। तो पिकनिक शब्द अगर आपको मिले तो क्या होगा, आज अगर यहां से अनाउंस किया जाए कि आज शाम को हम तपोवन में पिकनिक करने के लिए जाएंगे तो सब खुश होंगे ना, पिकनिक है। और पिकनिक में बाबा ने कहा क्या होता है, वैरायटी भोजन होता है, नमकीन भी होगा, मीठा भी होगा, खट्टा भी होगा तो तीखा भी होगा। ऐसे हमें इस रूहानी पिकनिक में अमृत वेले क्या करना है, बाबा के साथ में चलो बाबा आज हम स्वर्ग की सैर करने चलते हैं, तो स्वर्ग में आपको सुख का और खुशी का अनुभव होगा, खूब अच्छा अपने आप को बाबा के साथ में स्वर्ग में सैर करो। फिर कहो चलो बाबा आज हम मधुबन की सैर करते हैं, साकार के चरित्रों का, मधुबन का, झोपड़ी का, बाबा के कमरे का, अलग अलग आपको अनुभव होंगे। अभी बाबा हम परमधाम चलते हैं, तो परमधाम में परमात्मा मिलन की एक शक्तिशाली साइलेंस पावर का आप अनुभव कर सकेंगे। तो जब वैरायटी आपको मिलेगा तो उस वैरायटी के टेस्ट में, उस प्राप्ति में कहां भी मार्जिन नहीं है जो ये आंख बंद हो। या केवल हमें सुनना नहीं है, लेकिन जब तक सिद्धि प्राप्त करें तब तक अभ्यास करना होगा, तब हम निंद्रा जीत बन सकते हैं, नहीं तो बार बार निंद्रा हमें जीत लेती है। अभी निंद्रा जीत नहीं है, लेकिन निंद्रा जीत लेती है हमें। तो इस रीति से बाबा हमें वैरायटी प्रकार से अभ्यास कराते हैं और लास्ट बाबा कहता है इन सब को सहज रीति से प्रैक्टिकल में लाने के लिए आपको मनन चिंतन की आदत होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस करो। मैंने दादी जानकी को देखा है बहुत नजदीक से और उनसे इस चीज को सीखा भी है। दादी कहती है मैं रोज सुबह मुरली सुनने के बाद में सारा दिन माखन निकालती हूं। माखन निकालना अर्थात मनन चिंतन करना। फिर हंसते हंसते एक बार कहती है कोई कोई आता है ना उसको माखन खिलाती हूं, कोई कोई दिखाई देता है माखन नहीं पचा सकता है उसको छाछ पिला देती हूं, जो जैसा है। हम ये प्रैक्टिस करें, आप सबको चिंतन करने की अच्छी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है चिंतन की। अब वो पर चिंतन भी हो सकता है, व्यर्थ चिंतन भी हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि मेजोरिटी ये कंप्लेन करते हैं कि व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है। तो इसका मतलब चिंतन की प्रैक्टिस है। अब सिर्फ क्या करना है, चिंतन को बदल दो, मनन और चिंतन। उस मनन से मंथन से वो शक्ति आएगी, क्योंकि सारा दिन बार बार हमारा बुद्धि का योग बाबा के साथ जुटा रहेगा तो आत्मा में करंट चालू रहेगी। दादी जानकी ये शब्द भी बोलती है कई बार। दादी कहती सारा दिन मेरे में करंट आती रहती है, मैं उससे करंट लेती रहती हूं, और जब सारा दिन करंट आती है तो कोई मुझे टच नहीं कर सकता है, और जो टच करेगा वो कहां जाएगा, ऑटोमेटिक करंट लगेगा और दूर जाएगा। आप में करंट चालू रहता है, करंट चालू रहता है, घड़ी घड़ी हमारा कनेक्शन लूज हो जाता है। या तो एक नियम बना लो, सारा दिन में दोपहर को काम करने के बाद आप फ्री होते हो तब रात्रि को, मुझे आज की मुरली पर, हमने एक बार ये होमवर्क दिया था क्लास में, आज की मुरली पर मुझे 10 सेंटेंस लिखने हैं जो बाबा ने चलाया, उसको मंथन करके अपने भाव से उन्हीं शब्दों को मुझे 10 सेंटेंस जरूर लिखने हैं। तो ये लिखना है मना एक नियम बना, और नियम बना तो आपका मंथन चिंतन चलेगा। तो धीरे धीरे करते करते फिर आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक चिंतन नहीं है तब तक अनेक प्रकार की चिंताओं से आप मुक्त नहीं हो सकते, और ये चिंतन हमारा निरंतर कुछ ना कुछ कैसा ना कैसा चलता करें। और जब हमारी दिनचर्या इतनी परफेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो हमारे से सारा दिन में विकर्म होते हैं उनसे आत्मा मुक्त हो जाएगी। अच्छा, संक्षिप्त में एक बात मैं कहना चाहूंगी, इतनी सारी बातों की हमारे पास समझ है, जानते तो है ना इन बातों को, जानते हुए भी ये अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता है अथवा हम निंद्राजीत नहीं बनते हैं, तो एक कारण जो इन जनरल और मेजोरिटी में देखने में आता है, महसूस होता है, वो ये है कि ब्राह्मण बनने के बाद हम बहुत सारी सूक्ष्म मर्यादाओं का सूक्ष्म में उल्लंघन करते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में पाप कह सकते हैं। उस पाप का बोझ आत्मा पर होने के कारण ये आत्मा बाप से जो सकास और शक्ति का अनुभव करना चाहती है وہ نہیں کر سکتی. سمجھتے ہیں اس بات کو؟ کتنی سوکشم مریادائیں. کیوں مما کے یہ نیتر کھلے رہتے ہیں؟ مما میں پیوریٹی کا پاور تھا. ہم بھی بابا کی پوتر یوگی رچنا ہے. ایرشا یہ پیوریٹی ہے؟ پیوریٹی ہے نہیں. بابا نے بہت سوکشم, اگر آپ کو یاد ہو ایک بار مرلی میں, سستی اور آلسیہ کا کارن ایرشا ہے, یہ بیج بابا نے بتایا. کارن جیسے یوگ اگنی ہمارے بھی کرموں کو بھسم کرتی ہے, ایسے ایرشا بھی وہ اگنی ہے جو ہماری آنترک شکتی کو بھسم کرتی ہے. نفرت, ویرودھ, یاد بابا کو کر رہے ہیں, بار بار بدھی اس آتما میں جاتی ہے. بہت گہرائی سے اور باریکی سے آپ اس لاسٹ سینٹینس کو یاد ضرور رکھنا اور چیک کرنا, ہے آتما کس پرکار کی ایرشا تیرے میں ہے اور کون کون سے سوکشم پاپ جو تیرے سے سارا دن میں ہو رہے ہیں. آپ ایسا مت سمجھیے ابھی سارا برہمن پریوار سمجھ میں بہت پرفیکٹ ہے, اور سمجھتے ہوئے بھی ہم وہی کرم کرتے ہیں تو یہ بھی کرم نہیں ہے, پاپ کرم نہیں ہے. اور پٹ سے کہتے بھی ہیں میں جانتی ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے پر اس نے کیا اس لیے میں نے کیا. تو ہم اپنے آپ کو سوکشم پاپوں سے بچائیں اور یہ ایرشا کی اگنی کو, بیج کو اس یوگ اگنی سے جلا دیں, کیونکہ بابا کہتا ہے جلا ہوا بیج پھر کبھی بھی اگتا نہیں ہے. تو آپ سب بھی اتنی لگن سے یہاں بچی کر رہے ہیں تو جب یہ سارے چینجز ابھیاس سے اپنے میں لائیں گے تب آتما کی نندرا جیت اوستھا ہوگی. واستو میں نندرا جیت استھتی جو ہے وہ یہ سارے آدھار ہیں, وہ استھتی ہوگی جس میں ہر پرستھتی میں آتما ہر بات کا سامنا کر کے پروتی میں رہتے ہوئے نندرا جیت اور بابا کو اپنی شریشت استھتی سے پرتیش کرنے کے لیے ضرور نمت بنیں گے. ایسی شریشت اور شبھ بھاوناؤں کے ساتھ اوم شانتی.
Thank you.
مجھے یہ بتائے میرے دل کی دھڑکن، مجھے یہ بتائے تجھے پا کے پائے جنی آسمائے، یہ نینوں میں بابا
تیرا